Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse Number 17. भगवान श्री कृष्ण के पवित्र मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, तत्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः 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 तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। शब्दों का तद्बुद्धयस् अर्थात नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तद आत्मानम् जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तद निष्ठा अर्थात जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तद परायण उन्होंने उनकी शरण ले रखी है। गच्छन्ति जाते हैं अपना आवृतम अर्थात मुक्ति को ज्ञान द्वारा, ज्ञान अर्थात ज्ञान द्वारा, निर्धूत कर्मश, निर्धूत अर्थात शुद्ध किए गए कर्मश पाप या अविद्या। अनुवाद, जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण ही भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म की भी अनुमोदन करते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अर्थात परतत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कर्मच धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह बली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। सत्गुरुदेव महाराज की जय हो। कल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी अविद्या का मूलतः विनाश हो जाता है और उसे सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस प्रकार दिन में सूर्य के आते ही समस्त वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। वस्तुओं को प्रकाश पाने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, उसी तरह यदि हमें अपने जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है तो उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति अत्यधिक आवश्यक है। तो आज के श्लोक पर भगवान ने ज्ञान के महत्व को बताया और आज इस श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है और ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि दो प्रकार के ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है और एक परमात्मा का ज्ञान है। अब आध्यात्मिक ज्ञान से आप कर्म बंधन को रोक तो सकते हो परंतु कर्म बंधन को समाप्त नहीं कर सकते, है ना। जब आप कर्म कांड करते हो उसमें क्या होता है कि अब में मतलब कोई भी कर्मयोग जब आप करते हो तो जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के बाद कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, समस्त अपराधों का नाश हो जाता है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या लिखा, ज्ञान निर्धूत कल्मश। निर्धूत का क्या मतलब होता है कि वो आपके अपराधों को धूत मतलब साफ कर देता है, एकदम इतना साफ कर देता है कि कोई अपराध रह नहीं जाता। ये ज्ञान प्राप्त करने करना जिससे कोई अपराध बाकी ना रहे। निर्धूत मतलब धो लिया, सारे जितने भी अपराध हैं उनको इतना डिटर्जेंट के साथ धो दिया कि अब एकदम प्योरिटी, बल कुछ नहीं है, केवल प्योरिटी। और प्योरिटी में क्या दिखेगा, भगवान कहते यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्योरिटी नहीं है, क्योंकि परम सत्य केवल भगवान ही है। और श्रीमद् भगवद गीता में हमें पूरी भगवद गीता में यही बताया गया है और सारे वेदों का भी यही अभिमत्य है कि पर तत्व का अर्थ है परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वाला है समझा जाता है। यानी कि अगर हम पर तत्व को समझना चाहते हैं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो वास्तव तत्वदर्शी क्या है, जो भगवान ब्रह्म परमात्मा इन तीनों चीजों को समझ सके। और भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा, तीनों तत्वों को समझो और उसके बाद पराकाष्ठा क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण है, जो द्विभुज है, जो बांसुरी बजाते हैं, यानी भगवान ही पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर और कुछ नहीं है, वास्तविक ज्ञान यही है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के 7.7 के विषय में बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम एदम प्रोत्तम सूत्रे मणि गणा इव, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार मुझ में पिरोया हुआ है। वास्तविक में भगवान ही पूरे संसार, वास्तव में भक्तों हमारे पास जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका स्रोत कृष्ण है। अब देखो कोई इस संसार में हो बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और उसकी बुद्धि बहुत कार्य कर रही है, तो क्या उसने अपनी बुद्धि को खुद मैन्युफैक्चर किया है? नहीं। भगवान कहते हैं खम मनो बुद्धि रेवस, ये बुद्धि लेने दी है तुमको। यदि कोई बहुत सुंदर है तो क्या उसने अपने शरीर का निर्माण खुद किया है? नहीं, ये शरीर भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान ने। अब देखो अगर आपके पास कुछ आध्यात्मिक क्वालिटीज हैं या कुछ भौतिक, अब भौतिक में पहले देखें, कोई बंदा है बहुत अच्छा बोलता है, जब वो बोल रहा होता है, कोई कोई लोग को ऐसे होता है ना जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है घंटियां बज रही है और वो बोलता जाए, बस उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या जिह्वा उसने खुद बनाई है अपनी? क्या वो बोलने की क्वालिटी उसकी अपनी है? नहीं। कुछ साइंसदान जो है ना वो इस बोलने की क्रिया पर जब वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो बोला मनुष्य की जबान जो बोलने का वे ऑफ है ना वो इतना, जैसे किसी को पहचानने के लिए उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पहले क्या करते थे, किसी को पहचानने के लिए अंगूठे का निशान लगा देते थे तो फिर उस व्यक्ति को पहचान, लेकिन आजकल क्या होता है लोग प्लास्टिक सर्जरी करके अंगूठा चेंज कर देते हैं, तो अंगूठे को चेंज करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन थंबप्रिंट्स होते थे, लेकिन एक व्यक्ति का वे ऑफ टॉकिंग कभी भी चेंज, भले थोड़ी देर के लिए कोई लड़का लड़की की आवाज निकाल देता है, लेकिन वास्तव में उसका वे ऑफ टॉकिंग कभी, और ये वे ऑफ टॉकिंग है ना, बात करने का तरीका कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। जैसे आप जब बात कर रहे होते हो तो खाली आपके शब्द नहीं निकल रहे होते हैं, आपका पूरा पता चलता है भाव क्या है उसके अंदर। देखो कोई भी शब्द निर्जीव है, शब्द के अंदर कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, लेकिन जब आप उसको बात में बोलते हो तो उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। जैसे कोई लड़की अगर किसी लड़के को बोलती है ए यू रास्कल, तो डर जाएगा, लेकिन वही वर्ड्स बोलते हैं हे यू रास्कल, तो मतलब उसका तरीका ही अलग है। वो उसको तो मजाक में बोल रही है, उसका फ्रेंड है, उसने कुछ ऐसा किया जो मस्ती, तो मतलब वो शब्द अगर किसी को ऐसा बोलने का आर्ट है तो ये क्या वो अपने अपना उसने बना नहीं, ये हमारे अंदर जो भी, अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ। उसी तरह आध्यात्मिक में हम कोई भी उन्नति करते हैं, चाहे भजन में चाहे ज्ञान में, भगवान कहते हैं तेषां अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान दमतम नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासत। जब कोई अत्यंत ही श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी के साथ मेरे नाम का भजन करता है, तो ददामि बुद्धि योगम तम, उसे बुद्धि योग में प्रदान करता हूँ, उस पर जब मैं अनुकंपा करता हूँ, जब मैं उस पर करुणा करता हूँ, जब मेरी कृपा से उसके जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और आत्मभावस्तु ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाता है, और उसी के द्वारा वो आध्यात्म में उन्नति कर सकता है। तो जो कुछ भी, अगर भगवान नहीं हमारी सहायता करते तो हम किसी भी चीज में प्रगति नहीं कर सकते। हमारा एक एक कार्य, हमारा हर स्टेप जो है वो भगवान की मर्सी के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान की अनुकंपा के ऊपर निर्भर करता है। और ये नहीं है कि केवल कृष्ण जो है वो साकार रूप में, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण निराकार ब्रह्म की भी का भी अनुमोदन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 14.27 में, शायद हमने पढ़ा था ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि जो निराकार ब्रह्म है वो भी मैंने बनाया, यानी कि संसार में जो भौतिक है, जो आध्यात्मिक है, जो निराकार है, वो सब कृष्ण की कृपा है। अतः कृष्ण सभी प्रकार से परम सत्य है, परम तत्व है। तो यदि कोई अपने ज्ञान द्वारा इस फैक्ट तक नहीं पहुंचता है, इस गोल को नहीं, ये कंक्लूजन वो नहीं निकाल सकता है कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम तत्व है, अगर इस मकसद को नहीं प्राप्त करता है, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ज्ञान गधे की मानन बोझ उठाने के बराबर है। एक गधा है, उसको कुछ नहीं खबर, उसको लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं, वो एक दिन वो बोझा उठा उठा के मर जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसको। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी ज्ञान, भले इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो हम अगर उसको स्प्रेड करते हैं, अगर प्रचार करते हैं, तो प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फिलॉसफी जाने कि हम कितने ज्ञानी हैं, बल्कि क्या कि ये न कहना प्रकार है, अगर कोई मतलब सिंपल किसी को पता है ज्यादा, जैसे हमें वेदों का ज्ञान नहीं है, सिर्फ भगवद गीता के चंद श्लोक के विषय में, अगर हम ये किसी को बता सकते हैं कि कृष्ण ही आपका सर्वत्र है, कृष्ण ही परम तत्व है, कृष्ण में कृष्ण ही परम सत्य की पराकाष्ठा है, और आपको कृष्ण ही प्राप्त करना आपके जीवन का गोल है, और वो आप केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करके और भगवान की कथाओं का श्रवण करके, यदि आप ये करके भगवान को खाली प्राप्त कर सकते हो। और अगर कोई इस तरह का सिंपल और सरल प्रचार कर रहा है ना, तो समझो वो सही है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वो है ना, अगर फिलोसफियां झाड़ रहा है लेकिन गोल तक नहीं पहुंचा रहा है, कंक्लूजन नहीं बता रहा है कि कृष्ण ही परम सत्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, यदि ये चीज वो नहीं समझा पा रहा है, तो सब फिजूल है, क्योंकि वास्तव में हमें किसी को ज्ञानी नहीं बनाना है, हमें उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम्स क्या है? पुनरावृत्त। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, इस संसार में आना दुखमयी है, क्योंकि इस संसार में कोई आएगा वो जन्म लेना दुखमयी है, बहुत अत्यंत कठिन है जब हम इस संसार में आते हैं, और उससे भी ज्यादा कठिन है मृत्यु। और मृत्यु, अब इस संसार में अगर हम जितना भी कमाएं, जितना भी गेन करें, जितना भी यश हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, जितना भी भौतिक उन्नति हो, जितना यश धन शक्ति सुंदरता जो कुछ भी कमाते हैं, मृत्यु सब छीन के ले लेती है। हमारे सब रिश्तेदार जिनको मेरा 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 कहकर हम थकते नहीं हैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हर एक चीज हमसे छीन ली जाती है। पूरी जिंदगी जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं एक क्षण में छीन ली जाती है, कितना दुखमयी वो समय होता होगा। एक छोटी सी, मैं अपने मोबाइल की मैं बताऊं, अगर मैं खाली ख्याल में भी मुझे कोई बोले ना कि तुम्हारी मोबाइल को छीन के जाएगा, मुझे उसी टाइम पर रोना आ जाता है। कितना हम प्यार करते हैं कि एक चीज से, और अगर उस समय मृत्यु आती है, हमसे सब कुछ छीन के चले जाती है, तो कितना दुखदायक वो समय होगा। तो ये उस समय को बार बार आने से कैसा रोका जाए? कच्चन्त्य पुनरावृत्तम, क्या ऐसा किया जाए कि वो समय जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समय हमें बार बार ना देखना पड़े? उसका है, वो है ज्ञान की प्राप्ति। कि ज्ञान प्राप्त करेंगे ना फिर सब। अब यहाँ पर ये सोचे, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? भगवान ने देखो दो चीजें बताई हैं, एक तो ज्ञान निर्दूत कल्मशा, आप देख रहे हो ना श्लोक में जो एंड में लिखा हुआ है ना शब्द, ज्ञान निर्दूत कल्मशा, यानी ज्ञान से आपके समस्त कल्मश जो है वो धुल जाएंगे, और गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, और वापिस से आना, इस संसार में आना जो है वो खत्म हो जाएगा, इस आना नहीं पड़ेगा आपको। तो ज्ञान किस तरह, अब ये दो होंगे, ज्ञान का फल तो ये हो गया, लेकिन वो ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाए? तो भगवान बताते हैं, देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप चार चीजें जो हैं अपनी वो ज्ञान प्राप्ति करने में लगानी पड़ेंगी। क्या चार चीजें? तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा, ये चार चीजें हैं। तद्बुद्धयस्य यानी बुद्धि, तदात्मानः, तदात्मानः का मतलब होता है मन। देखो आत्मा जो है वो कभी कभी मन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और कभी कभी आत्मा जीव आत्मा के लिए, ज्यादातर जीव यूज होता है या आत्मा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर देखो आत्मा ना का मतलब होता है जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, और निष्ठा, निष्ठा मतलब श्रद्धा, और दूसरा तत्परायण, तत्परायण का मतलब होता है जिनकी शरण, देह जैसे हमारा ये है ना कि इसको ये गोल है, तो सबसे पहले है तद्बुद्धया। अब बुद्धि क्या है? भगवान बोलते हैं क्योंकि आप हर डिसीजन अपनी बुद्धि से लेते हो, इसलिए सबसे पहले बुद्धि को ज्ञान अर्जित करने में लगाओ, है ना। बुद्धि को कैसे लगाएंगे? एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि को परम बुद्धि के साथ योग करेंगे। कैसे? शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार और शुद्ध वैष्णव के अनुसार, उनके वचन सुनने के बाद बुद्धि से हम ये डिसीजन लेंगे कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके द्वारा ये शुद्धिकरण होने वाला है और पुनरावृत्ति समाप्त होने वाली है, उसको प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। भौतिक ज्ञान यदि आप प्राप्त करते हो, जैसे आप अगर फिजिक्स सीख रहे हो, केमिस्ट्री सीख रहे हो, बायोलॉजी सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो, उसके लिए केवल बुद्धि ही पर्याप्त है। परंतु ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाली बुद्धि पर्याप्त नहीं। याद है हम लोगों ने एक मिसाल दी थी कि बच्चा यदि दवाई नहीं खाना चाहता, बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, तो डॉक्टर दवाई किसको देगा? माँ को देगा कि भाई आप इसको सुबह को खिलाओ, शाम को खिलाओ और रात को खिलाओ, उसको खिलाना है क्योंकि उसकी बीमारी कैसे खत्म होगी। तो वास्तव में बच्चा क्या है, मन है, और बुद्धि क्या है, उसकी माँ है। तो बुद्धि को पहले समझाया जाता है, उसके द्वारा क्या करना है, मन को समझाना। अगर बच्चे को नहीं करा रही है, वो रख देती है अपनी बुद्धि समझ के, अपने पास ही संभाल देती है, लेकिन मन यानी बच्चे को वो नहीं खिला रही है। अब उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान हम बुद्धि के द्वारा हासिल कर लेते हैं। जैसे जब हम कभी प्रवचन में जाते हैं तो हम सुनते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, भगवान का नाम जप करने से इतना इतना लाभ प्राप्त होता है, हृदय शांत होता है, जीवन पवित्र होता है, हमारे समस्त कल्मश नाश हो जाते हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण के अंदर जितना पावर है वो भगवान के नाम के अंदर है, भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। यदि बुद्धि ने ये समझ लिया तो वो क्या करेगी कि हाँ, वो सोचेगी, डिसीजन लेगी कि हाँ मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि भगवान के नाम के कर ग्रहण करने के इतने सारे लाभ हैं, तो मुझे भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। लेकिन खाली यदि हम यही सोचकर जप कर रहे हैं और उसके अंदर मन नहीं लग रहा है, मतलब मन नहीं लगा रही, तो बुद्धि का ये कर्तव्य है कि मन को इस बात के लिए प्रेरित करे कि आपके जीवन का लक्ष्य यही है, तो आपको उसमें लगना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा नहीं मानता है, लेकिन वो किसी तरह से भी माता जो है वो ठगा के कैसे भी करके उसको ना वो कार्य कराती है ना, जैसे होमवर्क उसको नहीं करना होता, उसका दिल नहीं करता, लेकिन ये बुद्धि की हाथ से पकड़ के इधर से डोट लगाओ, देखो यहाँ पर करो ऐसा, देखो कैसे लग रहा है। तो इसी तरह से बुद्धि जो है वो मन को सिखाती है कि आपको ऐसे भगवान का नाम जप करना है, देखो आपको अच्छा बनना है ना, आपको ये सारे अपराधों से मुक्त होना है, आपको भगवान के चरणों में लगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है, मन बना, आपका मन को ये समझाना होता है बुद्धि को। इसलिए भगवान ने बताया तद बुद्ध तद आत्मानः, लेकिन मन भी लग रहा है। चलो कोई कोई हम भौतिक कार्य ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि से कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, लेकिन हमें निष्ठा नहीं होती कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परंतु निष्ठा जब तक नहीं है तब तक कभी भी हम उसको सरेंडर नहीं कर सकते। सरेंडर का मतलब क्या है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा, निष्ठा होगी भगवान के अंदर, भगवान का नाम के अंदर इतनी निष्ठा कि इस कार्य के अतिरिक्त और कुछ भी मुझे ऐसा संसार में नहीं मिला है, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, भगवान के नाम श्रवण के अतिरिक्त, भगवान की कथाओं का श्रवण करने के अतिरिक्त और नाम जप के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मेरा कल्याण हो। यदि जब तक ये निष्ठा नहीं होगी ना, तब तक आप भगवान को कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि तब तक हम लोग क्या सोचेंगे कि शायद ये कार्य तो चलो ठीक है, मैं टेम्परेरी साइड जॉब है ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक कल्याण तो भौतिक वस्तु, लेकिन ये भौतिक हमें क्या करना है, वास्तविक कल्याण तो इससे है, लेकिन भौतिक वस्तुएं तो ड्यूटी है वो करनी है, भौतिक क्या कार्य तो हमारी ड्यूटी है वो करनी है, क्योंकि भगवान के द्वारा ये सब ड्यूटीज हमें प्रिस्क्राइब की गई है तो हमें वो पूरी करनी है। लेकिन वास्तविक मेरा कल्याण यदि किसी चीज के अंदर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, भगवान के नाम का जप है, भगवान की कथाओं का श्रवण है, ये निष्ठा। इस जैसे हमें क्या पढ़ा, पहले बुद्धि लगानी है, फिर उसके बुद्धि काफी नहीं है उसके लिए मन को भी लगाना है, और मन भी काफी नहीं है उसमें निष्ठा, तन निष्ठा, उसके बाद निष्ठा भी अत्यंत आवश्यक है, और उसके बाद जो शब्द लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तत्परायणः। परायणः का मतलब होता है कि मुझे उस भगवान की शरण लेनी है, यानी मुझे उस भगवान के पास जाना है। यहाँ पर ये बात बहुत ही सुंदर है, जैसे अब एक ज्ञानी भक्त जो होता है उसे ये ज्ञान होता है कि इस संसार में रहकर मुझे सुखी नहीं होना है, मुझे भगवान के पास जाना है, तभी मैं पुनरावृत्ति, तभी तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होगा। पुनरावृतम, ये वापस उसको पुनरावृत्ति नहीं होना, अपुनरावृत्ति मतलब उसके वापस से संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन कर्मकांड क्या सोचता है, वो भी अच्छे कार्य कर रहा है, वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, कर्म कांडी जो होता है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? इस संसार में ही सुख प्राप्त करने के लिए, है ना। मैं अगर अच्छा कार्य करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा, मुझे संसार में सुख मिलेगा। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, ऐसी जगह को प्राप्त करना चाहता है जहाँ से उसको पुनरावृत्त न होना पड़े, जहाँ से उसको वापस आना ना पड़े, क्योंकि ये संसार में जब तक आएगा तब तक तो मृत्यु बनी रहेगी, तब तक तो जरा बनी रहेगी, तब तक तो बीमारियां बनी रहेंगी, तब तक तो क्लेश बने रहेंगे। लेकिन क्लेशों की समाप्ति के लिए एक ज्ञानी को पता है कि मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम, वो भगवान का धाम जहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हैं जो श्रील प्रभुपाद जी महाराज के गुरु महाराज है, वो क्या कहते थे, दिस वर्ल्ड इज लाइक लेटरिन, वो स्टूल रूम होता है ना लेटरिन, बोले ये संसार उसकी तरह है। अब लेटरिन में कोई जाएगा तो क्या करेगा, जाएगा अपना काम करेगा वापस आ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर बैठ के आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार यहाँ लेट्रिन जो है वो एंजॉय करने की जगह नहीं है, वहां पर मजा करने की जगह नहीं, वहां पर अपना काम करो और बाहर निकल जाओ, जो कर्मों का जो किया है उसका कार्यों को खत्म करो और वहां पर वहां से बाहर निकल के तब आपको आनंद आएगा। तो इस संसार को भी ऐसे ही कहा गया, ये कोई संसार एंजॉय करने की जगह नहीं। लेकिन बता रहे थे राधानाथ स्वामी कि अमेरिका में स्टोर रूम को क्या कहा जाता है, रेस्ट रूम, कि उस वहां पर इतना लक्जरियस होता है, इतने डियोड्रेंट्स लगे हुए होते हैं, इतना कंफर्ट कमोट होता है, फ्लैश वगैरह इतने मजे के लगे हुए, इवन वहां पर लाइब्रेरी भी होती है, बुक्स रखे हुए हैं, मैगजीन्स रखे हुए हैं, आराम से लोग वहां पर रेस्ट करते हैं और है ना बहुत देर तक मजा करके मतलब सुकून से बैठे होते हैं, वहां पर कोई चिक-चिक नहीं होती है उनके साथ और उनको वहां पर आनंद आ रहा होता है। लेकिन वास्तविक ज्ञानी क्या होता है, भौतिक संसार में सुखी होने की कोशिश नहीं करता, है ना। वो क्या चाहता है कि इस संसार में मेरे जितना भी अभी कर्मों का हिसाब किताब है वो मैं पूरा करूं और फिर मैं जल्दी से इस संसार से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि ये संसार रहने की जगह नहीं है आत्मा के लिए, जो रहने की जगह, हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ये आत्मा हमारे, ये आत्मा के रहने की जगह नहीं है यह संसार। आत्मा का जो रियल स्वरूप है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है, क्योंकि वो भगवान का दास है। संसार में रहकर तो उसे इंद्रियों और शरीर का दास बनना पड़ता है, भौतिक प्रकृति का दास बनना पड़ता है और इस शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों का दास बनना पड़ता है, लेकिन ये उसकी वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसका जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। और मुक्ति का क्या मतलब होता है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहे ना, ये मुक्ति है, वही आनंद है, वही संतुष्टि है। तो वास्तव में इस संसार से एक ज्ञानी जो होगा वो क्या चाहेगा, पहले बुद्धि को लगाएगा, फिर मन को लगाएगा, फिर निष्ठा होगी उसकी और फिर भगवत प्राप्ति के लिए इस संसार से बाहर निकलने के विषय में सोचेगा, मुक्ति के विषय में सोचेगा, ऐसी जगह जहां पर जाकर उसे पुनरावृत्ति न होना पड़े, गच्छन्ति पुनरावृत्ति, कि उसे वापस आना न पड़े। और आना तब नहीं पड़ेगा जब निर्धूत कलमश है, जब उसके सारे कलमश समाप्त हो जाएंगे। किससे समाप्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक और भी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। जब वो सारा बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान यानी कृष्ण, मन कृष्ण में लगाना है, मन किस में लगाना है, ज्ञान में लगाना है, ज्ञान मतलब कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई परम सत्य नहीं, निष्ठा लगानी है ज्ञान में। ज्ञान क्या है, भगवान है कृष्ण, यानी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण, और शरण किसकी, यानी तत्परायण में क्या आखिर में बोला, मत परा, तो कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। मन भी कृष्ण में, बुद्धि भी कृष्ण में, श्रद्धा भी कृष्ण में और गोल भी कृष्ण, यदि ये कोई कर लेता है तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। उनके सारे कर्मच, फिर क्या होगा, निर्दूत कर्मच, उसके सारे कर्मच अपराध नष्ट होंगे। भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे अपराधों को नष्ट करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आना मतलब मन बुद्धि ज्ञान अपनी निष्ठा अपना सब कुछ कृष्ण के अंदर लगाना। तो उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु पूर्णतया ज्ञात हो जाएगी। भगवान कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा और ऐसी बुद्धि प्राप्त कराऊंगा और इतना ज्ञान प्रदान करूंगा कि तुम इस संसार के कलमशों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, यानी कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ, परंतु कभी भी भगवान से मिलकर एक नहीं होना मुझे, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नित्य दास हूँ मैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता है। जब ये ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है कि मुझे भगवान नहीं बनना है बल्कि मुझे भगवान का दास बनना है और कृष्ण ही समस्त चीजों का स्वरूप स्रोत है, कृष्ण ही परम सत्य है और कृष्ण के अंदर यदि मन बुद्धि और निष्ठा लगाता है और कृष्ण को ही अपने जीवन का, कृष्ण की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है तो उसके समस्त कलमश दूर हो जाते हैं और वो बारंबार मृत्यु पुनरावृत में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है और मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता है, आगे जा रहा है मुक्ति के लिए। तो अर्जुन यहाँ पर सोच रहा है कि चलो ठीक है वो प्रगति तो कर रहा है मुक्ति पथ पर, लेकिन वो भगवान भगवत धाम जाएगा आगे जाकर, लेकिन जब तक वो इस भौतिक जगत में रह रहा है तो उसके क्या लक्षण है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर बुद्धि लगाई मन लगाया निष्ठा हो गई और हमें ये विश्वास हो गया कि कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है उसी टाइम पर तो हम मुक्त नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तो हम लोग संसार में रहेंगे। तो संसार में रहकर हमारे क्या लक्षण होंगे, किस तरह से कार्य करना होगा वो भगवान हमें बताएंगे श्लोक नंबर 18 में। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।